జయ కుంజ బిహారీ మాధవ. జయ రాధ మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ జయ యశోదానందన బ్రజ జనరంజన. యశోదానందన బ్రజ జనరంజన నందన. యమునా తీర వనచారి యమునా తీర యమునా తీర వనచారి. జయ రాధ మాధవ కుంజ బిహారీ. రాధ మాధవ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ యశోదానందన బ్రజ జనరంజన. యశోదానందన బ్రజ జనరంజన. యమునా తీర వనచారి యమునా తీర వనచారి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే. హరే Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Gauranga Ram Oh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Jaya Radha Vrindavan Bihari Radha Vrindavan Bihari Radhe Radha Vrindavan Bihari Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Jaya Prabhupad 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 Jaya Jaya Prabhupad 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna To aaj ke is रविवार सुबह के भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है तो आज हम भागवतम के चौथे स्कंद में से 25वां अध्याय और तीसरा जो श्लोक है तीसरा और चौथा उस श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं तो उस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे प्राचीन बरहिशम शतः कर्मस्वासक्तमानसं नारदोध्यात्मतत्वज्ञः कृपालो प्रत्यबोधयत् प्राचीनबर्हिशं शतः कर्मस्वासक्तमानसं नारदो ध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत् प्राचीन बर्हिशं शतः कर्म स्वासक्त मानसं नारदो ध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत् प्राचीन बर्हिशं शतः కర్మ స్వాసక్త మానసం నారదోధ్యాత్మతత్వజ్ఞ కృపాలో ప్రత్యబోధయాత్ ప్రాచీన బర్హి సంసక్త మాతాజీ బోలే ప్రాచీన ఆత్మతత్వజ్ఞ కృపాలు ప్రత్యబోధయాత్ ప్రాచీన్ బర్హిషం. రాజా ప్రాచీన్ బర్హిషిత్ కో శతః హే విదూర్ కర్మసు సకామ్ కర్మో మే ఆసక్త రత్ మానసం చిత్త నారద నారద్ మునినే అధ్యాత్మ అధ్యాత్మ విద్య ఇత్ తత్వజ్ఞ విశారద్ యా సత్యకా జ్ఞాత కృపాలు కృపా కర్కే ప్రత్యయ బోధయత ఉపదేశ దియా. అనువాద ఔర్ తాత్పర్య ఏషి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे. उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया. तात्पर्य जैसा कि भगवान चैतन्य के परम भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, केवल कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तादात्म्य एक प्रकार से नरक को जाना है. इसी प्रकार स्वर्गिक जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है. इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता. कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करना है और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ तदाकार होना है. जैसा कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, ज्ञानी निस्संदेह कर्मियों में श्रेष्ठ है. कोटि कर्म निष्ठा मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ. एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी हजारों सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है. चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 19वें अध्याय में 147वें श्लोक में ये कहा गया है. तो अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में प्रविष्ट नहीं होता. जब नारद मुनि ने राजा को सकाम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आई और इसमें संदेह नहीं कि संसारी कर्मियों की तुलना में यज्ञ संपन्न करके उच्च लोक की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं. किंतु शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहक गुण माने जाते हैं. हरे कृष्णा. तो ये जो अध्याय है इसका शीर्षक है कि राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन. और इसके पहले अध्याय में शिवजी द्वारा जो स्तुतियाँ गाई गई है, भगवान के जो गुणगान गाए हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई थी. तो ये स्तुतियों का जो गायन है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन बरही, तो ये प्राचीन बरही कौन थे, किसके वंशज थे, उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे. और इसी श्लोक में बताया जा रहा है कि इनके जो पुत्र थे प्राचीन बरही के प्रचेतागण, इन्होंने भी 10,000 साल तपस्या की. तो ये प्रचेता भी उनके कैसे पुत्र हुए, उनको उतनी तपस्या करने के लिए 10,000 साल तपस्या करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए किसने प्रेरित किया, इसके ऊपर संक्षिप्त में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे. ये जो संवाद चल रहा था पहले अध्याय में विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में चल रहा है. तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये भागवतम की ये कथा बता रहे हैं. तो 24वें अध्याय में बताया जाता है कि जो पृथु महाराज का बड़ा पुत्र था उसका नाम है विजिताश, और वो विजिताश जो है वो पृथु महाराज की तरह ही बहुत ही प्रसिद्ध था, और उनके तीन भाई थे तो हर भाई के साथ उनका बहुत ही अच्छा लगाव था, सबके साथ प्रेम था, उन सब भाइयों के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। राज्य कारभार करते समय में भी उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य कारभार में अलग अलग जगह पे व्यस्त किया था, तो ये भाइयों का बहुत ही प्रेम था। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम शास्त्र में भी देखते हैं, जैसे कि पांडव लोग हैं, तो पांडव जो है उनको एक ही नाम से बुलाया जाता था, हालांकि देखा जाए तो अलग अलग है फिर भी उनको पांडव कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके जीवन का जो ध्येय है भगवान की प्राप्ति है, उनके उद्देश्य एक ही था, तो इसके लिए उनको पांडव नाम से पुकारते। फिर दूसरा शास्त्र में उदाहरण आता है कि चतुष कुमार, तो इनको चतुष कुमार कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर कुमार का नाम अलग अलग, सनक, सनंदन, सनंदन, तो ऐसे अलग अलग नाम है फिर भी उनको चार कुमार ही कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र में उदाहरण है। तो ये प्रचेता गण में भी उसमें से एक उदाहरण आता है, तो ये 10 भाई थे फिर भी उनको प्रचेता के प्रचेता गण नाम से कहा जाता था या बुलाया जाता था। और दूसरा एक उदाहरण देखते हैं हम, हरियश्वास। हरियश्वास ये 10,000 भाई थे, 10,000 भाई होते हुए भी उन सबका मन एक था, सबका जीवन का उद्देश्य एक था। तो ऐसे शास्त्र में अनेक सारे उदाहरण हैं। तो उसके बाद मैत्रेय मुनि बताते हैं कि जो विजिताश्व की पत्नी है, उनकी पत्नी का दो पत्नियां थी, एक का नाम था सिकंडिनी और दूसरी जो है वो थी नभस्वती। तो सिकंडिनी से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, जो पुत्र अगले पिछले जन्म में कहा जाता है कि वो अग्निदेव के रूप है, तो अग्निदेव के रूप में उनको इतने तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए थे। दूसरी पत्नी है नभस्वती, तो ये नभस्वती से भी उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, और जिसका नाम उन्होंने दिया था हवीरधान। तो ये जो हवीरधान उनको पुत्र प्राप्त होता है वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था, और ये विजिताश्व भी जो है ये बहुत ही उदार स्वभाव के थे, और यज्ञ करने में उनको ज़्यादा लगाव था, और यज्ञ करते हुए भी वो स्वरूप सिद्ध होने के कारण हम देखते हैं कि उनको इस संसार के प्रति या फिर राज्य के प्रति वो आसक्ति कम होने लगी, और धीरे धीरे उन्होंने वो राज्य कारभार से वो त्याग करते हैं और भगवान की भक्ति में पूरी तरह लग जाते हैं, और फिर उन वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे विजिताश्व जाने के बाद फिर उनका जो लड़का है हवीरधान, तो हवीरधान की पत्नी रहते हवीरधानी, तो हवीरधानी के साथ उनकी शादी होती है। वो हवीरधान और हवीरधान को भी फिर बाद में 6 पुत्र होते हैं। वो 6 पुत्रों में से जो बड़ा पुत्र रहता है उस पुत्र का नाम रहता है बर्हिषित। तो ये पुत्र भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से लगाव से रहते थे, प्रेम से रहते थे, लेकिन जो बड़ा पुत्र है बर्हिषित वो कर्मकांड, यज्ञ या तथा योग अभ्यास में भी बहुत कुशल था, इसीलिए उनको प्रजापति भी कहलाया जाता था। तो बहुत ही योग्यता थी राजा बर्हिषित की। आगे चल के महाराज बर्हिषित ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए, तो राजा बर्हिषित जो है वो लगातार यज्ञ कर्मों में जुटे हुए थे। तो अलग अलग एक यज्ञ संपन्न हुआ कि उसके साइड में दूसरा यज्ञ, जैसे दूसरा यज्ञ संपन्न हुआ कि उसके साइड में तीसरा यज्ञ, तो पूरे पृथ्वी पे वो यज्ञ ही करते जा रहे थे। तो यज्ञ करना भी आवश्यक है ना, भगवान गीता में भी हमें इसकी पुष्टि देते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए। क्यों यज्ञ करना चाहिए? तो अन्नाद भवति पर्जन्यो, पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो सभी जीवों के संतुष्टि के लिए अन्न चाहिए, अन्न कहाँ से मिलेगा? तो पर्जन्य से अन्न मिलेगा। फिर पर्जन्य कहाँ से मिलेगा? तो यज्ञ करने से। तो इस प्रकार से हमें यज्ञ करने की भगवान भी मतलब गीता में बताते कि हमें यज्ञ करना चाहिए, लेकिन वो यज्ञ किसे अर्पण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार हम इस कलयुग में भी हमें यज्ञ करना चाहिए, हर युग के लिए यज्ञ है, लेकिन इस कलयुग में तो ये यज्ञ करना संभव नहीं है ना। एक यज्ञ करने के लिए हमें करोड़ों रुपए की सामग्री लगेगी, है ना, उतने श्रेष्ठ प्रकार के ब्राह्मण लगेंगे, तो उसके उस शुद्धता के ब्राह्मण भी मिलना कठिन है। तो इसके लिए इस कलयुग में हमें चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, प्रभुपाद बताते हैं उस तात्पर्य में कि इस युग में हमें यज्ञ करना चाहिए, लेकिन वो कौन सा यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है इस युग के लिए संभव है। कैसे संभव है? कि आसानी से हम यज्ञ हर जगह कर सकते, पूरे पृथ्वी पे कर सकते, और प्रभुपाद ने ये वाणी को मतलब चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सिद्ध भी करके दिखाया है ना। ऐसा कोई देश नहीं है अभी जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन नहीं हो रहा है, भगवान के नाम का गुणगान नहीं हो रहा है, भगवान का गीत गुणगान गाया नहीं जा रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि हमें इस पूरे पृथ्वी को अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र से अप्लावित कर दें, पूरे पृथ्वी पर अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र गुंजन करे, तो पृथ्वी के सभी जीवों का कल्याण, परम कल्याण हो सकता। तो इतना बड़ा ये प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि सभी देशों का परम कल्याण किसमें है, तो ये हरिनाम संकीर्तन करके हम सभी देश का कल्याण कर सकते। फिर राजा महाराज जो बरीषित है उनका नाम आगे जाके प्राचीन बरी होता है, और ब्रह्मदेव उनको समुद्र की जो लड़की रहती है शतद्रुति उससे विवाह करने के लिए कहते हैं। फिर शतद्रुति से उनका विवाह जब हो रहा था तो शतद्रुति इतनी सुंदर रहती है कि उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि जब वो यज्ञ में प्रदक्षिणा कर रहे थे राजा प्राचीन बरीषित और उनकी पत्नी, तो इंद्रदेव भी उनके प्रति अग्निदेव भी उनके प्रति आकर्षित हुए थे। तो उनको लग रहा था कि ये इतनी सुंदर है। उसके बाद वहाँ पे कुछ देवी देवता लोग आए थे, है ना, कुछ साधु लोग आए थे, फिर कुछ सिद्ध लोग है, आसुर है, नागलोक से भी कुछ देवता, नागलोक से कुछ आए थे। तो इस प्रकार अलग 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 लोग आए थे, लेकिन सब जब वो चलती थी तो सब उसके सौंदर्य की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो ये स्त्री भी जो है ये भगवान की एक शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान हमें किस प्रकार से आकर्षित करते हैं ये यहाँ पे देखा जा सकता है। बाद में आगे प्राचीन बरीषि को शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए, और 10 भी सभी समान रूप से धर्मात्मा थे, और आगे जाके वो प्रचेता नाम से विख्यात होती। तो यही जो प्रचेता गण है जिन्होंने 10,000 साल तपस्या की है, ये प्राचीन बरीषित के 10 पुत्र है। तो वो यहाँ इस श्लोक में धर्म स्नाता शब्द बहुत महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि 10 पुत्र जो है वो धर्म में रत थे। जब उनके पिता ने उनके विवाह करने को कहा तो सभी जो 10 पुत्र थे वो समुद्र की ओर चली गए दक्षिण दिशा में, और उधर जाके वो 10,000 साल तक भगवान की उपासना करने लगे। तो अभी हम इस कलयुग में कोई सोच सकता है ऐसा पढ़ने के बाद, क्या अरे ऐसे कैसे संभव हो सकता है 10,000 साल कोई से कोई तपस्या करेगा, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं। लोगों की आयु तो 100 साल के ऊपर नहीं जाती, कितना भी वो कि अपने तबीयत का कुछ ख्याल करे, ख्याल रखे, उसका खान पान का ध्यान रखे, कितनी भी अलग अलग वो साइंस का इस्तेमाल करें, तो भी वो 100 साल के ऊपर नहीं जी सकते। लेकिन ये कैसे संभव हुआ, तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताए थे कि ये बात जो है वो सत्य युग की है। तो उस समय लोगों की जो आयु है वो 1,00,000 साल थी, इसलिए उस समय ये 10,000 साल तपस्या करना संभव था। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई कोई जो साधु है ना, तो 60,000 साल तक तपस्या करते थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम शास्त्र में देखते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं लेकिन हमारे इस कलयुग में हमारा क्या हो सकता है, फिर हम तो इतनी तपस्या नहीं कर सकते, इतना ध्यान नहीं कर सकते, हमारी इतनी आयु भी नहीं है। तो हमारा कल्याण को अगर कोई व्यक्ति मानव समाज के सबसे निचले वर्ग में क्यों न जन्मा हो, लेकिन यदि वह भगवान के नाम का जप करता है तो वह धन्य है। क्योंकि यह समझा जाता है कि ऐसे जप से भक्ति सिद्ध कर देता है कि पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की तपस्या की है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे कि जो भी भक्ति कर रहे हैं, मतलब ये कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि बहुत जन्म का हमने पुण्य अर्जित किया होगा। तुकाराम महाराज भी कहते कि बहुत सुकृत अच्छी जोड़ी मनुन विठ्ठल आवड़ी, हमें विठ्ठल या कृष्ण तभी आकर्षित हो सकते हैं हम उनके प्रति, जब हमने बहुत जन्मों से पहले तपस्या की है, बहुत आराधना की है, भगवान की भक्ति की है, या फिर बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे। तो तपस्या करने के उद्देश्य फिर ये प्रचेतागण जो है, ये सभी प्रचेतागण अपना घर छोड़ते हैं पिताजी की आज्ञा होने के बाद, और घर छोड़ने के बाद वो दक्षिण दिशा में जाते रहते। तो जैसे वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको अचानक शिवजी मिल जाते, और शिवजी मिल जाते हैं और उनको भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में जानकारी दे रहे थे, और वो प्रचेतागण बहुत ही उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि जब ऐसा बताते हैं कि अचानक उनको रास्ते में शिवजी मिल गए, तो वो पूछते हैं कि ऐसे कैसे शिवजी मिल गए उनको, शिवजी कोई ऐसे ही व्यक्ति नहीं किसी को भी रास्ते में, अरे चल मैं जा रहा था इधर हमरापुर, रास्ते में मुझे शिवजी मिल गए, तो ऐसा संभव नहीं है। शिवजी मिलने के लिए हमको है ना 100 साल, 200 साल, है ना हजारों साल तपस्या करनी पड़ेगी तभी मिल सकते, ऐसे कैसे मिल गए। तो उस समय फिर विदुर मैत्रेय मुनि से बताते हैं कि तुम सही कह रहे हो कि देहधारियों के लिए शिवजी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना कठिन है,
लेकिन शिवजी जो है क्या करते हैं, वो अपनी असीम कृपा भक्तों को देने के लिए वो प्रकट होते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे जो प्रचेतागण है, ये प्रचेतागणों ने अपने पिता की जो आज्ञा है उसका अच्छे से पालन किया, इसलिए भी शिवजी उन पर प्रसन्न थे। और तीसरा कारण ये भी है कि वो भगवान की आराधना करने जा रहे थे, तो भगवान के भक्त के ऊपर शिवजी ऑलरेडी खुश रहते हैं, तो इसके लिए प्रचेतागण को शिवजी उधर रास्ते में मिले हैं। तो मैत्रेय मुनि बताते हैं कि प्रकृति के साधु प्रकृति के कारण और प्रचेताओं ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किए के कारण पश्चिम दिशा में चलने वाले वो प्रचेताओं को भगवान शिवजी ने वहाँ पे दर्शन दिया। तो जैसे वो जलाशय की तरफ जा रहे थे, तो कैसे दर्शन हुआ ये हम अभी देखेंगे कि उन्होंने जैसे जलाशय की तरफ जा रहे थे तो वो जलाशय समुद्र के समान विशाल था, लेकिन एक परम पुरुष जो रहता है उसके मन के भांति वो जो सरोवर है वो शांत था। और जैसे वो आगे जाते हैं तो उनको दिखता है कि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सुंदर फूल थे, कमल पुष्प थे, तो कुछ लाल रंग के थे, कुछ नीले रंग के थे, कुछ सफ़ेद रंग के थे, ऐसे अलग अलग रंग के वहाँ पे फूल थे। और ऐसा ही नहीं तो ऐसा वर्णन किया जाता है कि वो जो फूल है, कुछ फूल जो है मतलब सुबह खिलने वाले थे, कुछ दोपहर को, कभी कुछ शाम को, तो इस प्रकार वो फूल जो है मतलब कुछ रात को, तो पूरा मतलब 24 घंटा वो फूल उसमें खिले ही रहते थे। मानो ऐसा प्रतीत होता था कि वो जो सरोवर है वो सरोवर नहीं तो मतलब वो पुष्पों का वो खान है, कमल पुष्पों की पूरी खान उसमें है, ऐसा प्रतीत होता था। तो उस प्रकार से वो जलाशय का वर्णन किया है। और जैसे वो थोड़े से और आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद पूरी शांतता थी, उधर सब अलग अलग पेड़ थे, अलग अलग पंछी थे, और भ्रमर वहाँ पे गूंज रहे थे, इतना सुंदर मधुर आवाज कान को लग रहा था कि उनको लगा कि ये जो स्थान है हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा। तो लेकिन जैसे थोड़े आगे जाते तो उनको मृदंग की आवाज आने लगती, तो सोचते मृदंग की आवाज कैसे आ रही। बाद में उनको मृदंग के ताल के साथ अलग अलग वाद्यों के साथ उनको महसूस होता है कि अरे यहाँ से तो फिर अलग अलग राग भी गाए जा रहे हैं, तो कौन गाता होगा। और थोड़े आगे जाने के बाद फिर वहाँ उस जलाशय से शिवजी बाहर आते। तो जैसे शिवजी बाहर आ रहे थे तो शिवजी आते समय उनका जो रंग है, शिवजी के शरीर की जो कांति है, तो तप्त सोने के मतलब उबला हुआ जो सोना रहता है, तो सोने के भांति उनका शरीर चमक रहा था। और उनका जो कंठ है, हम जानते हैं कि वो नीलकंठ है, तो नीलकंठ नाम से भी शिवजी प्रसिद्ध है, आशुतोष नाम से भी शिवजी प्रसिद्ध है। तो उस प्रकार से शिवजी का वो दिव्य रूप वहाँ पे उनको दर्शन होता है। और उनके जो तीनों नेत्र है, शिवजी को तीन नेत्र कहा जाता है, तो तीसरा नेत्र भी वो खुला रहता है उनका, तो तीसरे नेत्र से भी वो सभियों को ऊपर जिसको भी देख रहे थे सभी को वो कृपा बांट रहे थे। तो इस प्रकार उनकी दृष्टि वो प्रचेताओं के ऊपर पड़ जाती। तो जैसे वो प्रचेताओं के ऊपर उनकी दृष्टि होती है तो जैसे प्रचेता देखते हैं तो तुरंत उनको अपना दंडवत अर्पण करते हैं और उनको पूरी तरह नौछावर हो जाते हैं कि मुझे आपके मतलब दर्शन हुए, हम कितने धन्य हैं। तो अपने मन में वो कृतज्ञता व्यक्त करते, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो शिवजी उनको आगे चल के कहते हैं कि तुम सभी प्राचीन बरीषित के पुत्र हो और तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगलमय हो। मैं जानता हूँ कि आप क्या करने जा रहे, इसीलिए आपको कृपा देने के लिए ही मैं यहाँ पे अपना आपको दर्शन दिया हूँ। तो इस प्रकार शिवजी जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, निम्न गानाम यथा गंगा। जो भी शिवजी की भी भक्ति करता है, शिवजी के प्रति आकर्षित होता है, तो निश्चित रूप से वो भगवान के भक्ति में लगता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई व्यक्ति एक अच्छे भाव से शिवजी की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से शिवजी उनको कृष्ण भक्ति ही देना चाहेंगे। तो इस प्रकार शिवजी उनको यहाँ पे फिर भगवान के बारे में अभी आगे चल के जानकारी देने वाले हैं। तो जो व्यक्ति, शिवजी बोल रहे उनको कि जो व्यक्ति सभी के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो शिवजी क्या कहते हैं हमें ये समझना चाहिए कि जो वास्तव में भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वही व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। तो तुम सभी भगवान के भक्त हो और मेरे लिए भगवान के समान ही पूज्य हो। अब मैं आप सबको एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य, पवित्र तथा शुभ है, किंतु जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने की जो इच्छा रखने वाले व्यक्ति है, लोग हैं, उनके लिए श्रेष्ठ स्तुति है। तो आप सावधानी से इसे सुनो। तो इस प्रकार से शिवजी आगे रुद्रगीत बोलने वाले हैं। तो ये रुद्रगीत हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि किस प्रकार वो भगवान का गुणगान करने से वो शुरुआत करते हैं रुद्रगीत की। तो वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में चतुर्व्यूह जो है भगवान का, उस रूप को अर्पण, प्रणाम अर्पण करते हैं। और हमारे शरीर में जो दिव्य अलग अलग तत्व है, तो उस तत्वों के आराध्य देवों को भी वो मतलब प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि उनको शुद्ध करें ताकि हम भगवान का दर्शन कर सकें। इसके बिना तो संभव नहीं कि भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, तो उनको इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा देख पाना कठिन है। तो इसके लिए शुरुआत में शंकर जी या शिव जी उनको वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इनके बारे में बताते। तो वासुदेव जो है हमारे चित्त के अधिष्ठाता है, तो हमारे चित्त को शुद्ध करे, मेरे चित्त को शांत करे, इस प्रकार से वासुदेव को प्रार्थना अर्पण करते। फिर शंकर्षण जो मिथ्या अहंकार के अधिष्ठाता है, तो वो संहार के स्वामी है, तो उनको फिर वो बोलते कि मेरे ममता नष्ट करो, मेरा अहंकार नष्ट करो। प्रद्युम्न जो है हमारे बुद्धि के अधिष्ठाता है, तो उनको प्रार्थना करते, पूरे यूनिवर्स के एनलाइटन करते हो, तो मेरे बुद्धि को जगाओ जिस बुद्धि के द्वारा मैं भगवान को जान सकूंगा। और फिर अनिरुद्ध जो है वो है हमारे मन के अधिष्ठाता, तो मन के जो स्वामी है ऋषिकेश, सभी इंद्रियों को आनंद देने वाले भगवान का नाम है ऋषिकेश, तो उनको भी वो प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरा मन आपके चरणों में लगाओ, मेरे मन को शुद्ध करो ताकि मैं ये मन से भगवान का स्मरण कर सकूं। तो इस प्रकार से अपने चित्त, बुद्धि, मिथ्या अहंकार, मन, उसके बाद अपने आईज है, आंखें हैं, फिर हमारा बोलना है, तो इस प्रकार भगवान के अलग अलग रूपों को प्रार्थना बोल रहे इस रुद्र गीत में। फिर बाद में बोलते हैं शिव जी की, हे भगवान, आप पितृलोक सभी देवताओं के पोषक है, चंद्रमा के आप प्रमुख है, वेदों के स्वामी है, समस्त जीवों के तृप्ति का मूल स्रोत है। हे भगवान, आप विराट रूप हो, तीनों लोकों के स्वामी हो, आप सभी वाणी से वास्तविक अर्थ प्रकट करते हो और सर्वव्याप्त आकाश हो। हे भगवान, आप कर्म रूपी परिणाम फल है, आप मृत्यु है और प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, परम भोक्ता है, सांख्य दर्शन के अधिष्ठाता है, धर्मों में सबसे श्रेष्ठ है, आपका मन कभी कुंठित नहीं होता। और इसकी ब्रह्म संहिता में भगवान मतलब ब्रह्मदेव भी इसकी पुष्टि करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान ही अनादि है। तो इस प्रकार की ये शिव जी जो भगवान की बहुत ही प्रिय स्तुतियां यहाँ पे प्रचेता गण को बता रहे, हे भगवान, आप कर्ता कारण नियंता है, शरीर मन इंद्रिय के आप परम नियंता है, आप अहंकार के भी परम नियंता रुद्र है, कृपया आप मेरा मिथ्या अहंकार नष्ट कीजिए। तो उसके बाद शिव जी उनको भगवान को रूप देखने की लालसा प्रकट करने के लिए बोल रहे हैं, और कैसे भगवान की सेवा करने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए इसी रुद्र गीत में। तो मैं आपका रूप देखना इच्छुक हूँ, जिस रूप में आपके जो प्रिय भक्त है वो आपकी पूजा करते हैं, तो आपका अनंत रूप है, लेकिन मुझे आपके भक्तों को जो रूप दिखता है या वो देखना चाहते हैं, वही रूप दिखलाइए जो मेरे इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला है। क्योंकि भगवान के बहुत सारे रूप है, लेकिन भगवान का वो रूप दिखाइए जो रूप से मेरी जो सारी इंद्रिया है ये तुष्ट हो जाएगी, और बाद में ये इंद्रिया दूसरे कोई चीज के प्रति आकर्षित ही न हो। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर स्तुतियां शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान की सुंदरता वर्षा के मेघों के समान है, तो यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं अभी। वे समस्त सौंदर्य के सारस्वत है, उनके नेत्र कमल के जैसे है, उनका नाक उन्नत है, उनकी हंसी सभी को मोहने वाली है, उनके कान आभूषणों से सुशोभित है, और उनका जो चतुर्भुज रूप है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो इस प्रकार से वो भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान जो है सर्व सौंदर्य संग्रह है, तो सभी सौंदर्यों का संग्रह जो है वो भगवान में है, सभी प्रकार के सौंदर्य भगवान से आते हैं। तो भगवान की मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर जो तिरछी नजर रहती है उसके कारण वो अनुपम सुंदर लगते हैं। तो भगवान के झलमिलाते कुंडल है, चमचमाता मुकुट, कंगन, वनमाला, नुपुर, करधानी, अन्य आभूषण, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये वक्षस्थल का कौस्तुभ मणि, श्रीवस्त्र, ऐसे अलग अलग प्रकार की भगवान की वो स्तुतियां यहाँ पे गा रहे हैं। तो बाद में वो बोलते हैं कि भगवान के जो कंधे हैं वो कंधे कैसे हैं, वो सिंह के समान है। तो जैसे सिंह देखते हैं हम कि मतलब कितना कॉन्फिडेंट रहता है, जो चलता है तो मतलब उसके जो बाल है, जब उसके मतलब बाल ऐसे हिलने लगते थोड़े थोड़े, तो ऐसा लगता है कि मतलब शेर आ गया तो कोई सामने रुक नहीं सकता, है ना। तो शेर से मतलब भगवान के कंधों की तुलना की गई। तो वो भगवान के जो कंधे हैं उनके ऊपर फिर फूलों की माला है, तो और भी मतलब वो कंधे बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ये स्तुतियां शिव जी यहाँ पे गा रहे हैं। बाद में बोलते हैं कि उनका जो पेट है ना, वो पेट कैसा है, तो पेट जो मतलब वटवृक्ष है, वटवृक्ष का जो पत्ता रहता है, जो गोल पत्ता, तो उस प्रकार से भगवान का पेट है, उसमें तीन रेखाएं हैं और उनकी जो नाभि है इतनी अंदर, मतलब अंदर डीप है कि ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड उसमें छुपने वाला है और उसी से सारा ब्रह्मांड भी प्रकट होता है। तो इस प्रकार से भगवान के नाभि का वर्णन होता है। फिर भगवान के जो पैर है, घुटने हैं, तो इस प्रकार से उनको अलग अलग शिव जी जो है उनको बता रहे कि किस प्रकार से हर हर भगवान की जो अंग है बहुत ही सुंदर है। तो भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडोल है। तो आपके चरण कमल, तो अभी चरण कमल के ऊपर आते हैं, तो शरद ऋतु के कमल पुष्प जैसे आपके दोनों पैर है या चरण है, और वो जो भगवान के नाखून है, वो नाखून तो ऐसे प्रतीत हो रहे कि उसमें से जो तेज निकल रहा है वो बद्ध जीव के हृदय का पूरा जो अंधकार है वो अंधकार नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान के नाखून से वो तेज निकलता है। तो आप परम गुरु है और आप जो है वो भक्त के हृदय का अंधकार पूरी तरह दूर करते हैं। जो लोग परिशुद्ध बनना चाहते हैं उन्हें आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, और जो भक्ति से मुक्त, भय से मुक्त होना चाहता है उन्हें भी भक्ति योग की विधि का पालन करना चाहिए। तो जिसे भी भय मुक्त होना है उसे इस भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। इंद्र है, ब्रह्मवादी, उनको भी आपको पाने की इच्छा है। बड़े बड़े देवता लोगों को भी आपको पाने की इच्छा है, लेकिन वो नहीं पा सकते। लेकिन जो आपके भक्त है वो आपको एकदम सरलता से पाते, बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त कर जाते हैं। तो आप एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते, तो आपको प्रसन्न करने के लिए भक्ति ही काफी है, बाकी कोई भी चीज से आप प्रसन्न नहीं हो सकते। दुर्जय काल सारे ब्रह्मांड का तत्क्षण संहार कर सकता है, लेकिन आपके शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। तो दुर्जय जो काल है जिसको कोई विजय नहीं कर सकता, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है, लेकिन भगवान के जो भक्त है उनके पास वो काल कभी नहीं जा सकता है ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में भी बोलते हैं ना, काल तो क्या मतलब, हे अर्जुन तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी भी यहाँ पे वही पुष्टि दे रहे हैं कि इवन काल भी उनके भक्तों के पास कभी नहीं जा सकता। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करेगा, भगवान को शरणागत नहीं होगा, तो मूर्ख ही होगा जो भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करता होगा। तो संयोग से अगर आपकी भक्ति की संगति किसे मिलती है तो उसे कर्म ज्ञान के फल का आकर्षण नहीं रहता, तो बाद में वो कर्म है, योग है, उस बाकी चीजों में वो कभी पढ़ नहीं सकता, तो सिर्फ वो आपकी भक्ति में ही लगा रहता है। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र पुरुष है जो वास्तव में विद्वान है, वह आपको परब्रह्म परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान के रुद्र रूप से भयभीत रहता है, किंतु भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय है। भगवान आपके हृदय में है। प्रचेताओं को बोल रहे हैं कि आप, भगवान आपके हृदय में है और उनकी महिमा जपो और निरंतर उनका ध्यान करो। तो इस प्रकार से शिव जी इस रुद्र गीत को यहाँ पे समाप्त करते हैं और उनको बोलते लास्ट में कि ये जो रुद्र गीत मैंने अभी आपको समझाया है, इसका हिस्ट्री क्या है। तो ये रुद्र गीत ऐसा नहीं कि रुद्र गीत मतलब रुद्र ने ही बोला है, रुद्र ने ही बोला है, लेकिन रुद्र ने कहाँ से सुना है, तो रुद्र बोलते हैं कि ये मैंने ब्रह्मदेव से सुना था। तो भगवान की जब ब्रह्मदेव प्रकट होते तो तब वो भगवान की ये रुद्र गीत से स्तुति करते। तो यही ब्रह्मदेव को जब प्रजा उत्पन्न करनी थी, तो प्रजा उत्पन्न करते समय उन्होंने जो भी प्रजापति है, फिर उसके बाद शिव जी है, प्रजापति है, और बड़े बड़े जो भी ऋषि है उनको प्रजा उत्पन्न करने के लिए फिर वो ये रुद्र गीत सुनाते हैं। तो ये रुद्र गीत वहां से आया हुआ है। और जब मुझे भी शिव जी ने जब प्रजा उत्पन्न करने के लिए कहा था तो उन्होंने मुझे भी ये बताया था, और वही जो रुद्र गीत है ये भगवान की स्तुतियां है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से जपो। तो इस प्रकार से शिव जी ने ये रुद्र गीत उनको समझाया, और बाद में वो फलश्रुति भी बताते हैं। शिव जी बोलते हैं उनको कि पिछले कुछ श्लोकों में लास्ट के कि ये जो श्लोक है ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये क्या कर सकते हैं, ध्यान तथा ध्यानपूर्वक अगर कोई ये स्त्रोत जपता है तो शीघ्र ही उसे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति कठिन करना कठिन है, लेकिन जो भी इस स्तोत्र का पठन करेगा उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और जो भी वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है ये स्तोत्र गाने से वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान को प्रसन्न करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन ये स्तोत्र गाने से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और अंत में कहते हैं कि अगर कोई प्रातः काल में इस स्तुति का जाप करता है, सुनता है, या समस्त वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अंतिम उपदेश शिव जी देते हैं कि यह स्तुति परमात्मा के स्वरूप है, भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है। मैं तुम्हें यह गाने की सलाह देता हूँ क्योंकि यह बड़ी सी बड़ी तपस्या के समान ही प्रभावशाली है। तो बड़ी बड़ी तपस्या के समान ही प्रभावशाली है, बस आपको इनको निरंतर जपना है। तो जब तुम परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हारे जो सारे अभीष्ट लक्ष्य है वो सारे लक्ष्य तुमको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से शिवजी ने उनको उपदेश देने के बाद फिर वो 10,000 साल तक ये स्तुतियों को गाते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, तो लास्ट में उनको भगवान वहां पे प्रकट भी हो जाते। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का, संतुष्ट करने का ये उपाय जो है शिवजी इस रुद्र गीत से प्रचेताओं को बताते हैं। तो आगे अभी दूसरा अध्याय चालू होता है कि राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो ये राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, अभी ये तो 10,000 साल तपस्या करने चले गए, लेकिन उनके जो पिता है राजा प्राचीन बहिष्यत, तो ये प्राचीन बहिष्यत तो उधर बच्चे जाने के बाद उनको लगता है कि अभी बच्चे थोड़ा ट्रेन हो गए, तपस्या करके आ जाएंगे, बाद राज्य कारभार संभाल लेंगे। लेकिन तब तक वो क्या करते हैं, यज्ञ करने में वो मतलब लग जाते हैं, या सकाम कर्मों में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कर्म में जुड़ जाते हैं तो अचानक वहां पे नारद मुनि आ जाते, फिर से उधर देख रहे हैं हम शिव जी उनके जीवन में आए प्रचेताओं के, और इधर देख रहे हैं कि उनके पिता के जीवन में फिर से नारद मुनि आते। तो नारद मुनि को यहाँ पे कहा, क्या कहा जा रहा है कि जब राजकुमार तपस्या करने व्यस्त थे तो उनके पिता के विविध सकाम कर्म करने रत थे, तो उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के जो ज्ञाता है तथा शिक्षक है, परम संत है, ऐसे नारद मुनि उन पर कृपालु होकर अपने कृपा के कारण वो उनको आध्यात्मिक उपदेश देने का निश्चय किया। तो यहाँ पे और मतलब ये भी आता है कि ये जो प्रचेतागण है या फिर ये राजा प्राचीन बहिष्यत है, ये ध्रुव महाराज के वंशावली में थे। तो ध्रुव महाराज है ना नारद मुनि के भी शिष्य थे, तो इसलिए भी है ना भगवान कहते भी है कि मेरे जो भक्त है उनका तो उद्धार होने वाला है, लेकिन उनके जीवन उनके परिवार के जो भी पिछले 10-50 साल के जो मतलब पूर्वज है वो भी है, और आगे वाली भी बहुत सारी पीढ़ियां हैं, उन सबका भी उद्धार होने वाला है। तो भगवान किसी को भी मतलब छोड़ेंगे नहीं, उनके जीवन में सदा बने रहेंगे। तो इसलिए एक भी व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा भी हमें इस श्लोक से मिल रही है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, वो कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तादात्म्य, ये नरक जाने के बराबर है, ऐसा कहते हैं। हम देखते हैं कि मतलब अभी ये सकाम कर्म में जुड़ गए, तो कुछ लोग जो है भगवान को अलग अलग रूप में तपस्या करते हैं या फिर जानने का प्रयास करते हैं, अपनी मनगढ़ंत बातों से भी भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहता है तो उसका मतलब वो आत्महत्या करने के समान ही है। तो तीन प्रकार के लोग होते हैं, तो एक होते ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द थे, भगवान को जानने वाले लोग। तो ये ब्रह्म को जानने वाले जो लोग है एक प्रकार से उसमें हत्या ही कर रहे, आत्मा की हत्या ही है। और इस प्रकार से स्वर्ग जाना भी है, कोई लोग फिर कुछ यज्ञ करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, वो पुण्य कर्म करने का उनका उद्देश्य है हमको स्वर्ग जाना है, बहुत सुख भोगना है, उसके लिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। तो ये भी एक माया जाल है। क्यों माया जाल है? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम अच्छे कर्म करेंगे उसका फल भोगने के लिए हमें फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग में रहेंगे वो फल भोगेंगे, और वो जैसे फल का भोग करना खत्म हो गया, क्रेडिट हमारा सब उड़ गया, तो फिर बाद में हमको उधर से लात मार के फिर पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि मतलब जब तक हमारा पुण्य कर्म है तब तक ही हम स्वर्ग में रह पाएंगे, उसके बाद हमारा जैसे बैलेंस खत्म हो गया फिर हमको इधर रिटर्न आना पड़ेगा, इसीलिए ये भी कुछ अच्छा नहीं है। ज्ञानियों का लक्ष्य होता है कि वो ब्रह्म तेज के साथ साका मतलब तदाकार हो जाए, कर्मियों का लक्ष्य है स्वर्ग की प्राप्ति, और जो भक्त है उनका क्या लक्ष्य है, उनका कभी भी कर्मी तथा ज्ञानियों के लक्ष्य के लक्ष्य को महत्व नहीं देता है। तो उसको पता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, कैसे मैं ये जन्म मृत्यु से छूट सकता हूँ। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में भी इसकी पुष्टि होती है कि एक जो ज्ञानी रहता है निश्चित रूप से एक जो सकाम कर्मी है उससे श्रेष्ठ है, और एक सकाम कर्मी भी जो है श्रेष्ठ है एक संसारिक जो व्यक्ति है जो संसार में ही लिप्त है उससे अच्छा कम से कम एक सकाम कर्म तो कर रहा है तो कम से कम ऊपर तो जाएगा, तो इस प्रकार से वो श्रेष्ठ है। लेकिन नारद मुनि ने यहाँ पे वो बता रहे कि उनको सकाम कर्म से भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है, तो आपका सबसे बड़ा जो कल्याण होने वाला है वो है भगवान की भक्ति करने में। तो आपका परम कल्याण किस में है, इसके लिए नारद मुनि यहाँ पर वो अहेतु की कृपा के कारण, तो हम देखते हैं कि अहेतु की जो कृपा है, भगवान के भक्त है, भगवान है, तो हमें बारंबार शास्त्रों से भी दिखाई देती है और हमारे जीवन में भी दिखाई दे रही है। तो ये अहेतु की कारण, अहेतु की भक्ति के कारण ही हम जो भी अभी भक्ति के स्तर पे है वो अहेतु की कृपा से ही है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद की अहेतु की कृपा से हमारा पूरे विश्व में ये हरे कृष्ण आंदोलन फैला है, चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, जो भी लोग उसमें जुड़ रहे वो प्रभुपाद की बहुत ही असीम कृपा है। प्रभुपाद का उसमें कुछ हेतु नहीं है, बस हेतु यही है कि सभी जीवों का कल्याण हो, परम कल्याण हो। तो यहाँ पे नारद मुनि भी वो परम कल्याण करना चाह रहे थे, उसको उस संसार के जकड़न से उसको बाहर निकालना चाह रहे थे। तो भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जो है इसकी फिर से पुष्टि कर रहे हैं। क्या पुष्टि करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इस जीवन में हम संसार में सभी लोग शांति चाह रहे हैं, यहाँ शांति मिलेगी वहाँ शांति मिलेगी, लेकिन शांति नहीं मिल रही। लेकिन भगवान यहाँ पे ये सूत्र है, शांति सूत्र ही कहा गया इस श्लोक को, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। तो सभी तपस्या है, यज्ञ है, इन सब का जो भोक्ता हूँ वो मैं हूँ, और ये सब अगर तुम मुझे अर्पण करोगे, सर्व लोकों का मैं महेश्वर हूँ, सभी देवताओं का मैं मतलब परम पूज्य हूँ, तो अगर कोई भी मुझे शरणागत होता है तो मैं सभी का कल्याण कर सकता हूँ। सुहृदम सर्व भूतानाम, सारे जो जीव है उनका मैं सुहृद चाहता हूँ, सबका हित चाहने वाला हूँ। ये जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह सकता या हो भी नहीं सकता जो सबका सुहृद चाहने वाला हो, वो भगवान और उनके भक्ति हो सकते। दूसरा इस जीवन में हमें कभी मतलब हर व्यक्ति कुछ भी हमको कुछ भी मतलब बताना चाहेगा, ऐसा प्रेम से बताएगा कि हमें लगेगा कि अरे ये तो मेरा सबसे मतलब सुहृद व्यक्ति है, इससे प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके पीछे उसका कुछ हेतु रहता, वो बाद में हमें समझ में आएगा। जब वो अपना हेतु प्रकट करेगा तब बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं, माया अलग अलग रूप हमें दिखाती है, तो उस समय हमें लगता है कि अरे यही हमारा सबसे कल्याणकारी है, अरे मेरा कितना कल्याण हो गया, धन्य हो गया, हम उसका गुणगान करना चालू कर दे तुरंत, अरे वाह वाह कितना धन्य हुआ आप मेरे जीवन में आ गए, सही में भगवान ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है आप मेरे, मतलब भगवान को कम उसको ज्यादा हम महत्व देते। लेकिन बाद में वो ऐसा झटका देगा कि बाद में समझ में आएगा कि वो दूसरा ही चाहता था हमसे, और हम अगर उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो तब हमको फिर उसके समझ में आएगा कि वो हमारा सुहृद है क्या नहीं। लेकिन भगवान हम देखते हैं हमारी अच्छी स्थिति हो बुरी स्थिति हो, हमें कभी छोड़ते नहीं है। तो मैं क्लास सुन रहा था कि किस प्रकार से भगवान हमारे ऊपर मतलब सुहृद है, किस प्रकार से हमारे ऊपर अहेतु की कृपा कर रहे हैं। तो भगवान का जो नाम है इतना दिव्य है कि करोड़ों तपस्या करने के बाद कोई व्यक्ति ये भगवान का नाम ले सकता है, लेकिन हम जानते हैं खुद को कि मेरा मन कैसा है, जप करते हुए भी मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर मेरा कुछ भी ध्यान नहीं है, फिर भी मुंह से नाम चल रहा है। करोड़ों जन्मों के बाद पुण्य मिलने वाला है, करोड़ों तपस्या से, करोड़ों साल की तपस्या से कोई व्यक्ति हरि नाम ले सकता है, लेकिन हम इतना पाप कर रहे हैं, इतने अपराध कर रहे हैं, अपराध के सिवा तो हम जप कर भी नहीं सकते, पूरा अपराध के साथ ही जप होता है, फिर भी भगवान की इतनी कृपा है कि हमको जुड़े रह रहे, हमको लगे रहने दे रहे इस भक्ति में। तो ये भगवान की बहुत ही बड़ी असीम कृपा, प्रभुपाद की असीम कृपा है कि भक्तों की कृपा है ना, हम कितने सारे अपराध भी करते हैं तो भी भक्त हमें इस भक्ति मार्ग से बाहर जाने नहीं देते, हमें बार बार क्षमा करते हैं। तो ये भगवान का जो गुण है अहेतु की कृपा, वो भगवान के बड़े बड़े भक्तों में भी हमें दिखाई देता है। तो आगे फिर नारद मुनि आगे वाले जो चौथा श्लोक है उसमें बताते हैं कि हे राजा, तुम सकाम कर्म के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना है और सुख भोगना है, और सकाम कर्म से ये दोनों साध्य नहीं होंगे। जीवन के दो उद्देश्य है, पहला एक तो है समस्त कष्टों से छुटकारा पाना और दूसरा है सुख भोगना। तो तुम सुख भी नहीं भोगोगे क्योंकि वो सुख भी क्षणभंगुर रहेगा, जो तुम कर्म अभी कर रहे हो उससे तुम्हें परमानेंट सुख नहीं मिलने वाला है, उसको उससे तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। और जो जीवन का परम उद्देश्य है समस्त कष्टों से छुटकारा पाना है, वो तो तुम पा ही नहीं सकते। तो उसके बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद बताते कि संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित किया है। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो लाभ के लिए पूरा दिन रात मेहनत कर रहा है और उसको लग रहा है कि अभी मुझे लाभ मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो फिर और मेहनत करता है, फिर थोड़ा उसको सुख मिल रहा है ऐसा अनुभव होता है। कष्ट में उसको जस्ट थोड़ा बहुत कुछ यश मिल रहा है, वो यश के कारण उसको लग रहा है कि मैं सुख ही भोग रहा हूँ, लेकिन हालांकि देखा जाए तो कष्ट भोग रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर नौकरी कर रहा है तो नौकरी करने के लिए उसको डे भी करना पड़ता है, नाइट भी करनी पड़ती है, तो उसको लगता है अरे मेरा सैलरी बढ़ गया, अरे बढ़ गया लेकिन इधर तुरे अपनी नींद गवा दी और दिन रात मेहनत कर रहा है। तो प्रभुपाद इस प्रकार से कह रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं वो वास्तविक उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या हो गई, आच्छादित हो गई। तो उनको लग रहा है कि मैं सुख भोग रहा हूँ लेकिन हालांकि वो दुख ही भोग रहे हैं। हम यहाँ पे एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि एक जो छोटा बच्चा रहता है, हमारे जीवन के भी अलग अलग मतलब उद्देश्य रहते हैं। यहाँ पे बता रहे मतलब नारद मुनि के हमारा जीवन का उद्देश्य है कि सभी कष्टों से छुटकारा पाना, तो हमारे जीवन के उद्देश्य बदलते जा रहे हैं। तो हर किसी व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ये होना है कि ये कष्टों से मैं कैसे बचूं। लेकिन बच्चे जो रहते छोटे जन्मे हुए बच्चे, उनका उद्देश्य रहता है कि अपने माँ को कैसे मिलूं, मेरी माँ मिल गई तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो जैसे बच्चे से माँ को अलग किया जाता है तो तुरंत ए माँ माँ करके रोने लगेगा, तो जैसे माँ आ जाएगी फिर हंसने लगा। तो इस प्रकार से जो बच्चा है जब माँ के पास जाता है संतुष्ट होता है, उसको लगता है माँ कब दिखेगी। बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है अरे पिता भी है मेरे भाई, तो माँ से कब तक प्रेम करेगा, कभी मेरे भी पास तो आ जाओ, मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। तो फिर पिताजी उसको खिलौने लाके देंगे, उसको खुश करने का प्रयास करेंगे, उसको अरे ये भी मेरे सबसे मतलब प्यारे है, यही मेरे जीवन के उद्देश्य लगता है, ये मुझे खुश करते हैं तो इनसे मुझे आनंद मिलेगा। फिर पापा से भी कभी कभी उसको झाप पड़ने लगेगी, फिर उसके लगा अरे इसमें कुछ ज्यादा नहीं है तो मुझे ज्यादा शिक्षा ही दे रहे, तो मुझे दूसरा सुख ढूंढना पड़ेगा। फिर उसको लगता है अरे मेरे दोस्त है, दोस्त से मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, ये मुझे कुछ डांटते नहीं कुछ नहीं, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करते हैं, मेरे साथ मैं जो करना चाह रहा हूँ उसमें साथ भी देते हैं, तो ये मेरे सही मतलब जीवन के सही मित्र हैं। तो उनके साथ वो कुछ जीवन बिताता है, फिर आगे चल के उसको लगता है कि अरे मित्र भी कभी कभी धोखा दे रहे भाई, वो मुझे छोड़ के दूसरों के साथ मतलब ज़्यादा खेल रहे हैं, तो कभी फिर वो दोस्तों से भी उसको ये होता है। फिर उसको लगता है कि अरे जो बड़ा होता है तो फिर उसको लगता है कि मेरी जो शिक्षा है, शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे मैं ज़्यादा आनंद मुझे आनंद मिलेगा या मैं सुख मिला प्राप्त करूंगा, तो शिक्षा के ऊपर फोकस करता है। फिर शिक्षा के बाद उसको लगता है कि अरे शिक्षा ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद अभी नौकरी चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे रहते हैं मतलब फर्स्ट क्लास में मतलब एग्जाम में पास होते हैं लेकिन बाद में नौकरी के लिए परेशान रहते, कैसे तो करके फिर नौकरी मिल जाती है। तो जीवन का उद्देश्य बदल रहा है, नौकरी मिलती है तो फिर लगता है अरे अभी एक बार शादी हो जाए तो अच्छा होगा, तो शादी के लिए परेशान होते, फिर शादी के बाद ऐसा लगता है कि अभी पत्नी आ गई ना वो मेरा सब कुछ सुनेगी अभी, लेकिन जैसे शादी होती है तो फिर वो भी पता चलता है अरे यार ये तो ज्यादा ही परेशानी में अटक गया। तो इस प्रकार से हमारे उद्देश्य लग रहा है हमें कि ये प्राप्त चीज प्राप्त करने से हम सुखी होंगे, वो प्राप्त करने से सुखी होंगे, फिर लगता है अभी यार ये पत्नी से ज्यादा हो गया, अभी ये बच्चा है ना इसको ज्यादा प्रेम करूंगा, यही मेरा जीवन मतलब अच्छा सुखी बनाएगा, तो बच्चे से प्रेम करने लगता है। धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होता है तो वो भी सुनता ही नहीं, आगे चल के उनको घर से भी बाहर निकाल देता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। बाहर निकालता है तो उसको लगता है अरे यार मैं अभी अलग इतना पैसा कमाया, बच्चों के लिए इतना सारा किया, कुछ मतलब नहीं रहा, पत्नी ने भी धोखा दिया, बच्चों ने भी धोखा दिया, अब क्या करूं। तो जैसे वो फिर कभी ऐसे मंदिर के तरफ जाता है या फिर समुद्र के तरफ अपने मन को शांत करने के लिए जाता है, इसमें तो सुख मिलेगा भाई, कभी जाते के देखता हो तो समुद्र के साइड में ऐसे टहलता है तो वहां पे वो बिस्किट खाता है और पीछे पीछे एक उसके कुत्ता आता है, तो वो कुत्ते को बिस्किट डालता है, कुछ वो धूम हिलाता है मस्त, अरे वाह ये तो ये सही सबसे प्रामाणिक व्यक्ति लग रहा है मुझे, इसके साथ ही मुझे रहना चाहिए अभी, तो वो बोलता है चलो अब ये कुत्ते को ही लेके जाता हूँ, मेरा अभी मेरा पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, अब ये कुत्ते के साथ तो रहता हूँ। तो इस प्रकार से लोग जीवन में उनका कुछ उद्देश्य ही नहीं है, कब किससे वो संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लोगों का जीवन बीतता जा रहा है, लेकिन उनको अपने जीवन का जो उद्देश्य है परम श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनको शरणागत होना, ये प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके कारण सभी जीवात्मा जो है वो दुखी है, कष्टी है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जार दखो तारक हो कृष्ण उपदेश। तो हमें प्रभुपाद का जो आंदोलन मिला है, जिस संस्था से हम जुड़े हैं, ये सही में वास्तविक में सभी जीवन का कल्याण कर सकती। तो इसको हमें बढ़ाना होगा, इसमें लोगों को जुड़ाना होगा, तभी पूरा संसार ये सुखी हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि पूरे संसार में लोग सुख ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण फिर से इसकी पुष्टि करते हैं भगवद गीता में कि ये जो जगत है, ये संसार है, ये दुखालयम अशाश्वत है, इसमें दुख ही शाश्वत है, बाकी सब अशाश्वत है। सुख अशाश्वत है लेकिन दुख शाश्वत है, दुखालयम अशाश्वत। तो इसमें दुख ही दुख मिलने वाला है, लेकिन हम इसमें बहुत कठिन परिश्रम करके सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो किस प्रकार से कहा जा सकता है इसको, प्रभुपाद भगवद गीता के एक तात्पर्य में बताते हैं कि जो ऊंट रहता है वो ऊंट क्या करता है, उधर जो पेड़ रहते हैं वो पेड़ के कांटे ही खाता है। तो कांटे खाने से उसको बहुत मजा आता है, तो उसको लगता है कि अरे मेरे को तो मतलब इससे बहुत रस मिल रहा है और रस से मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। चूहे को प्रभु जी के साथ खेलने में आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऊंट जो है वो कांटे खाता है और उसका खुद का रक्त ही वो चबाता है, खुद का खून ही चबाता है, खुद का खून ही वो निगलता है और उसको लगता है कि मैं उस पेड़ से ही मुझे खून मिल रहा है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो अपने खुद का ही खून निकलता है। और बाद में खाना खाने के बाद उसको बाद में पता चलता है कि अरे मैं तो सिर्फ पूरा दुख ही दुख, मुझे बहुत फिर उसको वेदना होने लगती। तो इस प्रकार से हम संसार में जो सुख चाह रहे हैं, इससे सुख मिलेगा उससे सुख मिलेगा, तो इसमें हमें दुख ही मिलने वाला है। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि कई कोई कोई तर्क कर सकता है, फिर क्या कर तर्क कर सकते हैं कि भक्तों के लिए भी तो भक्ति करने के लिए कष्ट सहने होंगे ना, ऐसे नहीं कि भक्ति एक बार स्वीकार किए तो कोई कष्ट ही नहीं, बाबा चलो आनंद ही आनंद है, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो तो देखते हैं बाहरी दृष्टि से, वो देखते हैं भक्तों को, अरे ये भी लोग बहुत परेशान है भाई, अपनी नींद छोड़ के जपा में आ जाते, नींद छोड़ के आ तो जाते लेकिन फिर झपके लगाते बैठते, तो ये परेशानी है ना, अच्छे से जाके नींद लो, तो ऐसा उनको महसूस हो सकता। लेकिन भक्तों को पता है कि ये जो परेशानी मैं उठा रहा हूँ, ये परेशानी का अंतिम जो उद्देश्य है वो सुख में परिवर्तित होने वाला है कि नहीं। तो हमें कभी कभी भक्त सेवा देते हैं, तो सेवा बाद में जैसे देते तो ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे तो सर के ऊपर इन्होंने ढोंगर रखा है क्या, बड़ा पर्वत रखा है, कैसे करो अभी, है ना। लेकिन वो पर्वत रख रहे हैं, लेकिन वो भक्त आपके ऊपर अहेतु की कृपा ही कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के वही जो पर्वत आपके सर के ऊपर लग रहा है आपको, वो आपके जीवन का आपको सबसे परम सुख का कारण बनने वाला है, आपके जीवन का अंतिम सुख का कारण बनने वाला है। तो इसके लिए हमें बाहर के लोगों के लग सकता है, लेकिन हमारा अंतिम जो जीवन है उसमें हमारे सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। और जो सत एकदम असली जो दुख है वो दुख क्या है, तो प्रभुपाद वो बताते हैं कि वो असली दुख जो है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये असली दुख है, इससे कैसे हम छूट पाए, क्योंकि हम देखा जाए तो जो देवता है ब्रह्म है शिव जी है या फिर जो अलग अलग देवता है इंद्र है चंद्र है, ये सभी देवता भी जन्म मृत्यु के चक्कर में है। हालांकि देखा जाए तो उनका जन्म मृत्यु अलग हो सकता है, लेकिन वो लोग भी जन्म मृत्यु के चक्कर में अटके हुए हैं, तो वो लोग भी उससे बाहर नहीं निकल सकते, वो भी उससे बच नहीं सकते। तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि असली जो दुख है ये जन्म मृत्यु, इससे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ, इससे मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण हमें भगवद गीता में बताते हैं कि किस प्रकार से हम ये जन्म मृत्यु से भी बच सकते हैं। शिवजी ने तो ऑलरेडी बताया, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, एक श्लोक कोट करते कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। तो हे अर्जुन, मेरे जो जन्म है कर्म है ये बहुत दिव्य है, और जो लोग ये जान जाएंगे मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म साधारण मनुष्य की तरह नहीं है, तो वो लोगों को क्या होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, वो तत्वता जानेंगे, तत्व से इसको जान लेंगे, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। तो हे अर्जुन, उनका कभी फिर मृत्यु होगा ही नहीं, वो साक्षात मुझे प्राप्त करेंगे, और जैसे मुझे प्राप्त करेंगे तो फिर उनका परम जो सुख है ना, परम सुख की उनको प्राप्ति होगी। तो यह सुख जो है यह परम अवस्था है, और दुख का लेश मात्र भी वहां पे नहीं है। तो इस प्रकार हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये जो भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए जो सबसे अनमोल चीज दी है इस युग के लिए, सबसे बड़ा जो युग का धर्म है ये कलयुग का, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यत, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं, अन्य कोई मार्ग नहीं, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही हमें इस कलयुग से बचा सकता है, और हमारा जो जीवन है वो परम कल्याणकारी बना सकता है। तो इसके लिए हमें वो भगवान के नाम को शरणागत होना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की लीला सुननी चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, और अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद, मेरी कुछ भी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोलने का प्रभु जी ने जो अवसर दिया है, प्रभु जी ने सेवा दी, तो सभी भक्तों का प्रभु जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और मतलब मैं पहली बार क्लास दे रहा हूँ, कभी बोला भी नहीं हूँ, और मतलब जस्ट इतना ही कहना चाहूँगा कि इससे मुझे एक अनुभव हुआ कि मतलब हमें बहुत सीरियस से भगवान की भक्ति जो है उसको लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ सही नहीं है हमारा क्योंकि इसका ये क्लास प्रिपरेशन के लिए मैं 2-3 दिन से लगातार प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कुछ बोल नहीं पाया ज़्यादा कुछ भी। तो ये सब भक्तों की कृपा है, और भक्त हमारे ऊपर ये देना चाह रहे हैं कि आप तैयार हो जाइए, है ना, ये जो असीम कृपा आपको मिल रही है उसको बांटने के लिए तैयार होना है। तो मैं बहुत फिर से धन्यवाद व्यक्त करूँगा सभी भक्तों का, भगवान का, प्रभुपाद का, कि मुझे भगवान की सेवा करने के लिए ऐसे ही लगाते रहे और भगवान की सेवा में मुझे अवसर प्रदान करते रहे।